हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आदित्य और सुनैना एक साथ वहाँ पर वापस पार्टी हॉल में आए और आदित्य को देखते ही नदीम तुरंत उसके पास आया और बाकी सारे लोग भी जो इतनी देर से उन दोनों के लिए परेशान थे, सबके चेहरे पर खुशी की चमक साफ नज़र आने लगी। नदीम के पास आते ही आदित्य ने उसके कान में कुछ कहा और वो अपना सिर हिलाकर वहाँ से चला गया। दक्ष बहुत ही कन्फ्यूजन से आदित्य की तरफ देख रहा था और उसकी कही बात के बारे में भी सोच रहा था। नदीम ने स्टेज पर आकर होस्ट के हाथ से माइक लिया और अनाउंस करते हुए कहा, सॉरी फॉर दैट लिटिल डिस्टर्बेंस बट पार्टी इज ऑन गाइज। आदित्य के रिलेटिव उसके चाचा चाची और सुनैना के रिलेटिव से उसके मम्मी पापा और बाकी रिलेटिव भी आज की उस पार्टी में आए हुए थे और ये सब कुछ तमाशा देखकर आखिर आदित्य के चाचा से रहा नहीं गया तो वो आदित्य के पास आते हुए बोले, क्या नौटंकी लगा रखी है, अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हो या फिर लोगों को धमकियां देने के लिए मीडिया को बुलाया था यहाँ पर? आदित्य, तुम ये सब क्यों करते हो? तुम्हें पता है इससे कंपनी पर भी असर पड़ेगा। चाचा, बाकी सारे रिलेटिव इतनी देर से दूर खड़े ये सब तमाशा देख रहे थे और वो जानबूझकर आदित्य से बात करने के लिए आगे नहीं आ रहे थे क्योंकि उन्हें पता था आदित्य हमेशा की तरह ही उन्हें इंसल्ट करेगा और कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सुना देगा और उन्हें फ़िलहाल वहाँ पर भरी महफिल में अपनी बेइज्जती नहीं करवानी, इसीलिए वो चुपचाप थे। लेकिन फिर दोबारा आदित्य के बाद जब इस तरह का अनाउंसमेंट हुआ तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने आदित्य के सामने आते हुए ये सब कुछ बोल दिया। आदित्य ने बहुत ही एटीट्यूड से चाचा जी की बात का जवाब दिया, मेरी कंपनी है वो और अगर उसे पर कोई असर पड़ता भी है तो उससे आपको क्या लेना देना चाचा जी, आप पार्टी में आए हैं तो पार्टी एंजॉय करिए। आदित्य की ऐसी बात सुनकर चाचा जी बहुत ही ज़्यादा भड़क गए और वो आगे कुछ बोलने ही वाले थे तभी आदित्य अक्षत के कंधे पर हाथ रखकर उसे साथ लेकर वहाँ से आगे चला गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वहाँ चाचा जी के आसपास कोई भी रहे। नैना पहले ही वहाँ पर साइड में जाकर स्वीटी और सुनैना के साथ खड़ी हुई थी और वो तीनों लड़कियाँ आपस में कुछ बात कर रही थीं। अक्षत के साथ आदित्य भी थोड़ा सा आगे आया और उन दोनों को वहाँ पर आते देख अनय भी वहाँ पर ही आ गया और फिर वहाँ आते ही वो सबसे पहले आदित्य के कसकर गले लगा और उसके गले लगाते हुए बोला, तू ठीक है ना? तेरे और सोना के रहते मुझे कुछ हो सकता है क्या? आदित्य ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब दिया। आदित्य की बात सुनकर अनय के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, हाँ हम दोनों तो हैं ही, लेकिन फिर भी तू ऐसा बर्ताव करता है जैसे कि तू एकदम अकेला पड़ गया और कोई तेरे साथ नहीं है। नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही, आदित्य अपने बालों में हाथ डालते हुए थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोला और अक्षत वहाँ पर सामने खड़ा उन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को लड़ते झगड़ते और बात करते देख कर मुस्कुरा रहा है। तभी अक्षत को एकदम से कुछ ध्यान आया तो उसने उन दोनों के बीच बोलते हुए कहा, बाय द वे हैप्पी एनिवर्सरी आदित्य, आखिर इसके लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। इतना बोलते हुए अक्षत से आदित्य के सामने अपना हाथ बढ़ाया तो आदित्य ने भी मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाया और कहा, थैंक्स एंड सॉरी ऑल्सो, क्योंकि तुम अपना इतना कीमती टाइम निकालकर यहाँ पर आए और तुम सबको यहाँ पर ये सब देखना पड़ा, सॉरी फॉर ऑल दैट मिस, लेकिन वो सब प्लान में नहीं था बिल्कुल भी। इतना बोलते हुए आदित्य ने अपने बालों में हाथ डालते हुए इधर उधर देखा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरेस्ड फील कर रहा था। इंटरव्यू के नाम पर वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो याद करके और उन सभी ने वो सब देखा और आदित्य का ऐसा बिहेवियर भी। अरे नहीं आदि, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, मुझे पता है ये सब तो चलता ही रहता है और फिर मीडिया वाले लोग तो अच्छे खासे इंसान का भी दिमाग ख़राब कर देते हैं, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। इतना बोलते हुए अक्षत ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर हल्के से मुस्कुराया। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और वो फिर से कुछ बोलने ही वाला था कि उससे पहले अनय भी बीच में बोल पड़ा, हाँ यार कंग्रेचुलेशंस, एक साल हो गए शादी को, आखिर ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी वाली बात है क्योंकि शादी में तो तूने बुलाया नहीं था तो एक साल बाद ही सही तेरे साथ सेलिब्रेट करने को तो मिल रहा है और बाकी की बातें छोड़, जो हो गया वी डोंट माइंड, है ना अक्षत? अनय ने अक्षत की तरफ देखकर उससे पूछा तो अक्षत ने भी सहमति में अपना सिर हिलाया और वो सब बात कर ही रहे थे तभी विवान वहाँ पर आया और उसने भी आदित्य को एनिवर्सरी विश की और फिर अरुण ने भी, क्योंकि विवान और अरुण इतनी देर से एक साथ ही खड़े थे। मनस्वी उन सब लोगों से थोड़ा दूर अलग होकर खड़ी थी क्योंकि वो किसी को भी इतना पर्सनली नहीं जानती, वो सिर्फ अनय के साथ टाइम स्पेंड करने की वजह से यहाँ पर आ गई थी, लेकिन अभी अनय आदित्य का ही पीछा नहीं छोड़ रहा था तो वो दूर खड़ी बेबसी से उसकी तरफ ही देख रही है। उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था लेकिन अपने गुस्से को वो कंट्रोल कर रही थी। तभी नैना भी आदित्य की तरफ आते हुए बोली, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी जीजू, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू बोथ, आई होप आप लोग ऐसे ही अपनी 100th मैरिज एनिवर्सरी भी साथ में सेलिब्रेट करें। इतना बोलते हुए नैना ने आगे जाकर आदित्य को साइड हग किया। आदित्य ने भी हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोला, हाँ, और तुम भी उस 100th एनिवर्सरी पर इस तरह से ही मुझे विश करो, तभी तो अच्छा लगेगा ना सेलिब्रेट करने में। आदित्य की ये बात सुनकर नैना हंसने लगी और वहाँ खड़े बाकी सारे लोग भी। और उसके बाद नदीम ने एक अनाउंसमेंट किया और वो आदित्य सुनैना दोनों अपनी एनिवर्सरी का केक कट करने के लिए दोबारा से स्टेज पर गए और सुनैना ने आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसके साथ ही आगे बढ़ी। बाकी सारे लोग स्टेज के सामने ही आकर खड़े हो गए। वो सब स्टेज के सामने आकर खड़े हो गए, सिर्फ अनय थोड़ा सा पीछे रुककर इधर उधर मनस्वी को ढूंढने लगा, क्योंकि इतनी देर वो आदित्य के साथ था तो उसने मनस्वी पर ध्यान ही नहीं दिया था और उसने देखा साइड में वो खड़ी होकर अंकित से बात कर रही थी, शायद इसलिए क्योंकि वो वहां पर और किसी को उतना जानती ही नहीं है। अनय ने उस तरफ देखा और अंकित से बात करते हुए मनस्वी भी काफी खुश लग रही है और काफी ज्यादा स्माइल भी कर रही है, जो कि नॉर्मली वो नहीं करती है। ये देखकर अनय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वो गुस्से में उस तरफ ही बढ़ा और तभी अंकित मनस्वी के चेहरे की तरफ एकदम गौर से देखने लगा और उसके चेहरे पर कुछ लगा हुआ था, तो अपना हाथ बढ़ाकर वो उसे हटाने ही वाला था और मनस्वी भी एकदम ही रुक गई। अंकित के इस तरह से हाथ उसके चेहरे की तरफ लेकर आने पर उसने अपना चेहरा हल्के से पीछे किया और हैरानी से आंखें बड़ी करके अंकित की तरफ कन्फ्यूजन से देखने लगी। लेकिन तभी अनय वहां पर उनके बीच आ गया और उसने अंकित का हाथ कसकर पकड़ते हुए उसे रोक लिया। अपनी हद में रहो मिस्टर बॉडीगार्ड, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंकित का हाथ झटक कर छोड़ते हुए अनय ने बहुत ही ज्यादा गुस्से में घूर कर उसकी तरफ देखते हुए कहा। अनय की बात पर अंकित भी उसे सुनाते हुए बोला, मैं अपनी हद में ही हूँ, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो और वो भी अचानक से। अभी तक के कहाँ थे तुम जब मैडम यहाँ पर अकेले खड़ी बोर हो रही थी और तुम्हें पता है वो दक्ष चौहान भी आकर मैडम को क्या कुछ नहीं बोल रहा था, तब कहाँ थे तुम अपने दोस्त के पास? हाँ, वो ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए, तो फिर जाओ ना, मैं यहाँ पर हूँ। अंकित की ये सारी बातें सुनकर अनय एक झटके से अपना सर घुमाकर मनस्वी की तरफ देखने लगा, जैसे कि वो इस बात पर उसका भी कन्फर्मेशन चाहता हो।
उसके इस तरह से देखने पर मनस्वी ने अपने सिर पर एक हाथ रखा और आंख बंद करते हुए धीरे से अपना सिर हिलाया और कुछ भी नहीं बोली। उसे चुप देखकर अनय खोरी तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, मनस्वी ये क्या बोल रहा है और वो दक्ष तुमसे क्या बोल रहा था? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया और कुछ बोलोगी तुम? मनस्वी ने भी उसे चुप कराते हुए तेज आवाज में बोला, स्टॉप शाउटिंग अनय, और सही कह रहा है वो, क्यों तुम बेवजह उसे पर चिल्ला रहे हो? क्या मैं अकेली खड़ी रहूं पागलों की तरह? कम से कम वो मुझे कंपनी तो दे रहा है। अच्छा हुआ अंकित भी यहां पर हमारे साथ आया, नहीं तो मैं एकदम बेवकूफ लगती कोने में अकेली खड़ी हुई। ऊपर से वो सारे लोग जिन्हें पता है मेरी और आदित्य की राइवलरी के बारे में, वो भी पूछ रहे हैं कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, अब क्या बताऊँ मैं उन्हें? मनस्वी की ये सारी बातें सुनकर अनय एकदम ही हैरान रह गया और उसने अंकित की तरफ देखा तो वो अपने दोनों हाथ बांधकर एकदम प्रोफेशनली वहां पर खड़ा हुआ है और चारों तरफ नजर रखता हुआ इधर उधर देख रहा है। अनय ने फ्रस्ट्रेशन में अपने माथे पर आए बालों में हाथ डालकर बालों को पीछे किया और फिर मनस्वी से बोला, तो क्या करूं मैं, तुम क्या चाहती हो, पूरा टाइम तुम्हारे साथ खड़े रहूं? आखिर हम आदित्य की एनिवर्सरी पार्टी में आए हैं और फिर इतना कुछ हो गया तो बस मैं थोड़ी देर के लिए ही उसके साथ गया था और तुम्हें लग रहा है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें अकेला छोड़ दिया, तुम भी मेरे साथ आओ ना। इतना बोलते हुए उसने मनस्वी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर वहां आगे आया और सभी के साथ आकर खड़ा हो गया। आदित्य सुनैना अब तक केक कट कर चुके थे और सभी लोग उनके लिए खुश थे और उसके बाद वहां की लाइट्स एकदम ही डम हो गईं और डीजे पर रोमांटिक सॉन्ग चलने लगा। स्टेज पर खड़े होस्ट ने उन सभी को डांस के लिए स्टेज पर इन्वाइट किया और एक एक कर सारे लोग ही स्टेज पर आ गए। आदित्य सुनैना पहले ही एक साथ वहां स्टेज के सेंटर पर ही खड़े हुए थे। उनके आसपास आगे पीछे तीन चार कपल खड़े हो गए, अक्षत नैना भी डांस के लिए खड़े हो गए, लेकिन अनय मनस्वी पता नहीं क्यों वहां पर साथ में आगे जाने में थोड़ा सा झिझक रहे थे। आदित्य ने मुस्कुराकर सुनैना की तरफ देखा और तभी डीजे पर सॉन्ग प्ले हुआ और गाना सुनते ही आदित्य ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और तुरंत ही सुनैना ने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। बैकग्राउंड म्यूजिक, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें तेरा साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। आदित्य ने एक हाथ में सुनैना का हाथ थामा और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखते हुए वो एकदम धीरे धीरे उसके साथ स्लो डांस वही स्टेज पर करने लगा और उसके आसपास खड़े नैना, अक्षत, विवान, स्वीटी सबने मुस्कुराकर उन लोगों की तरफ देखा और वो चारों भी एक साथ डांस करने लगे। अरुण को इग्नोर करने के लिए स्वीटी जानबूझकर विवान के साथ डांस कर रही है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो अरुण के साथ डांस करती तो उन सभी की फैमिलीज को प्रॉब्लम हो जाती। क्रमशः